ओमज्ञानतिमिरान्धस्याज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रटे जा राधे राधे। तो बरसाना ये श्री वृंदावन धाम का अंतपुर है। जैसे हमारे घरों में बहुत सारे कमरे होते हैं और कुछ होता है ऐसा कमरा जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं आता है, केवल घर के व्यक्ति जाते हैं, जो एकदम निकट होते हैं घर के, परिवार के प्रेमी होते हैं, वही वहाँ प्रवेश कर सकते हैं। वैसे भगवान का पूरा घर वृंदावन धाम है, उसके अंदर बरसाना, नंदगांव, जावट, गोवर्धन, ये सब जो है बहुत उत्कट जगह है। लेकिन बरसाना उसमें विशेष इसलिए है नंदगांव, क्योंकि बरसाना नंदगांव में कोई राक्षस नहीं आया और भगवान ने बड़ी विशेष रूप से इसकी योजना बना के रखी, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ पर उनकी चटपटी अंतरंग लीलाएं जो है वो प्रकट हो जाए। तो वो उन्होंने कैसे किया, तो इसका प्रसंग जो है वो उस प्रकार से आता है कि भगवान ने जब गिरिराज गोवर्धन को उठाया तो इतनी अद्भुत लीला भगवान ने की। आज हमने पूरा वहां पर वर्णन किया, गोवर्धन के पास इतनी अद्भुत लीला भगवान ने की कि उसके बाद में लोग उसके बारे में बात किए बिना कैसे रह सकते हैं। जब लीला समाप्त हुई उसके बाद में कई दिन तक चर्चा चलती रही कि कैसे भगवान ने उठाया। हाँ, जैसे हमारे यहाँ पर पुष्प उत्सव होता है, पुष्प अभिषेक होता है, तो कई दिन तक लोग चर्चा करते रहते हैं, अरे ऐसे फूल वैसे फूल, ये फूल बेंगलोर से आए थे, वो फूल वृंदावन से आए थे, वो फूल यहाँ से आए थे, वो फूल कर्नाटक मैंगलोर से आए थे, उसकी खुशबू कैसी थी, उसकी कुछ भी रंग कैसा था, और इसने ये काटा, उसको पंखुड़ी निकाली, उसने दिन रात में ये काम किया, उसने ये सेवा दिया, 1008 किलो फूल आए थे। बहुत दिन चर्चा चलती रहती है। जो लोग एकदम सेवा में पूरी तरह से अंदर चले जाते हैं ना, वो बहुत दिन तक बातें करते रहते हैं। यहाँ तक कि रोज जो भगवान का श्रृंगार करते हैं वो भी भगवान के विषय में बात करते रहते हैं, देखो मैंने उनको ऐसा श्रृंगार किया, मुरली धारण ऐसे कराई, फिर मुरली का जो पीस था वो मैंने बनाया था, वो माताजी ने मुझे वो पीस बना के दिया, फिर मैंने वो यहाँ पर लगाया, वो यहाँ पर लग नहीं रहा था, फिर मैंने उसको वहाँ पर लगाया। इतनी छोटी छोटी सेवा करने पर भी हम उसकी चर्चा करते रहते हैं, अरे नंद बाबा के फीस्ट में इतना बढ़िया आइटम बना था, वो आइटम तो क्या बढ़िया बना था, वो हमारे प्रभु जी ने बनाया था, वो इतना सुंदर था, इतनी लंबी फीस थी, पता नहीं कितने आइटम थे। और ये तो भगवान 7 दिन 7 रात 24 घंटा उसको उठा के खड़े हैं, उसके अंदर 7 दिन 7 रात में अनंत लीलाएं हुई। वो कुछ हम लोग ऐसा गिने चुने जानते हैं, बाकी अंदर क्या हुआ कौन जानता है, इतनी दिव्य लीला है वो। तो कई दिन तक उसकी चर्चा चलती रही और वे एक वहाँ पर एक गोकुल में जब थे वहाँ पर, और एक नंदगांव में यहाँ पर, और एक काम्य वन में भी, एक 84 खंभा करके जगह है, नंद बैठक बोलते हैं उसको, वहाँ पर ये सब बड़े बड़े ग्वाल बाल जो है वो आ जाते हैं। सब दिन भर की जो लीला होती है वो शाम को चर्चा करते हैं उसके बारे में, आज क्या हुआ, क्योंकि आते ही बालक बताते ना कि आज ऐसा ऐसा हुआ, अरे आज बताया आपको वो राक्षस को मार दिया उन्होंने, आज बताया हमने ताड़ गोले खाए, वहाँ पर धेनुकासुर का वध हुआ, आज बताया कृष्ण ने ऐसा किया वैसा किया, आज ये हुआ वो हुआ, पूरी चर्चा शाम को रिपोर्ट मैया बाबा को मिल जाती है। उसके बाद में ये लोग बैठ जाते हैं और डिस्कस करते रहते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो ये जो लीला हुई गोवर्धन की, उसकी कई दिन तक चर्चा होती रही। सब लोग बात करते थे कि अरे ऐसा अद्भुत बालक है तुम्हारा नंदा, तुम्हारा बालक तो बहुत अद्भुत है, कोई कर सकता है क्या ऐसा, 7 साल का बालक इतना पर्वत उठा के खड़ा है। तो अचानक नंद बाबा बोल पड़े, हाँ हाँ वो गर्ग मुनि ने तो कहा था कि ऐसे करने वाले, वो गर्ग मुनि ने कहा था कि ऐसे होने वाला है, ये गिरिराज को उठाने वाला है। सबों का आश्चर्य हुआ, अरे गर्ग मुनि कब आए यहाँ पर, किसी को पता नहीं था गर्ग मुनि आए। तो कारण ये था कि जब वसुदेव को पता था ना कि उनका ही बालक है, वही छोड़ के आए थे उसको, तो उन्होंने इनका संस्कार करने के लिए गर्ग मुनि तो उनके परिवार के पुरोहित है ना, उनको भेज दिया। उन्होंने कहा कि उनको कहना कि बड़ी गुप्तता से इसका नामकरण करना, क्योंकि कंस का आतंक वैसे भी है, वो देख रहा है किधर है बालक, तो गुप्त रूप में उनका नामकरण करना, जो संस्कार करना है, जात कर्म करना है, कुंडली बनाना है, जो भी कुछ भविष्य बताना है, सारा सेरेमनी जो है ना एकदम शांति से करना है। तो नंद बाबा ने फिर गर्ग मुनि के सलाह से और वसुदेव के संदेश के अनुसार किसी को बताया नहीं, केवल घर के लोग थे उसके अंदर, और वो भी गौशाला के अंदर गुप्त जगह पर, किसी को अनाउंसमेंट नहीं, बोर्ड नहीं, पताका नहीं, झंडा नहीं, कुछ नहीं, गुप्त रूप में उन्होंने पूरा उनका नामकरण विधि किया। तो बिरादरी के लोगों को पता नहीं था, जो ग्वाल बाल उनके मित्र हैं उनको पता नहीं था, जो रोज़ बैठते हैं बातें करते हैं, किसी को नहीं बताया, जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि यहाँ की बात वहाँ, हम जानते हैं गाँव में कैसे होता है, कोई बात गुप्त रहती नहीं गाँव में, तुरंत सबको पता चलता है, वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल इन द विलेज। तो जब उन्होंने ऐसे ही बात बात में भूल गए वो कि हमको ये बताना नहीं चाहिए था, बता दिया उन्होंने, तो सब ग्वाल वालों को आश्चर्य हुआ, अरे कभी आए गर्ग मुनि, तभी उनको अरे मैं तो बताना नहीं चाहिए था उसको, बता दिया मैंने उसको, तो एकदम गुस्से में आ गए वो, अरे वो नामकरण करने के लिए आए थे और आपने उनको बताया भी नहीं, इतना बड़ा संस्कार किया, किसी को बुलाया नहीं आपने, कैसे बिरादरी के लोग हो आप, उनको बिरादरी के लोग मानते हो, मित्र मानते हो, बताया भी नहीं आपने, इतना बड़ा भविष्य बताया उन्होंने कि आगे जाकर ये लड़का ये करेगा वो करेगा ये करेगा, इतनी बड़ी कथा बताई आपको इसके भविष्य के बारे में, और आपने उनको बताया तक नहीं। तो बात बात में फिर आप बोले, फिर आप बोले, फिर आप बोले, फिर आप बोले, एकदम गर्मी बढ़ गई बातों बातों में। तो अचानक सब लोग नंद बाबा पे बहुत गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा कि कैसे मित्र हो तुम, कैसे ग्वाल बाल बिरादरी के हो, हमको बताते नहीं हो, हम इनको हमारे बिरादरी से हद पार कर देते, वी रस्टिकेट हिम आउट ऑफ कम्युनिटी। तो सब लोग एकदम वातावरण बदल गया है, तो बीच भगवान की चर्चा कर रहे थे, अचानक एकदम क्रोध में आ गए सब लोग, और नंद बाबा को हद पार करने की बात होने लगी, तो सब लोग एकदम टेंशन में आ गए। तो जब ऐसी बात हो रही थी तो अचानक विश्वानु बाबा खड़े हो गए, क्योंकि विश्वानु बाबा और नंद बाबा बड़े अच्छे मित्र हैं एक दूसरे के। तो ऋषभानु बाबा ने कहा, अरे ऐसा मत करो, ये नंद बाबा जो है बेचारे बड़े संकट में थे उस समय, तो ऐसा मत करो, ये तो प्रसंग की बात है ना, अभी समय समय की बात है, आज तो वैसा आतंक नहीं, लेकिन उस समय था, उस समय अभी तो हम लोग दूर बैठे हुए हैं, अभी तो नंदगांव में आ गए तो ये ऋषभानु ने नंद बाबा का पक्ष लिया, तो लोग जो गुस्से में थे, गरम गरम भाव में थे, बोल रहे इसको भी हद पार कर दो, नंद का पक्ष लेता है इसको भी निकाल दो। तो एक और ग्रुप उठा, उन्होंने बोला अरे इनको निकालने की बात मत करो, इनकी कन्या के वजह से तो हम लोग यहां पर टिके हुए, ये महाप्रतापी कन्या है इनकी, महाप्रतापी कन्या के प्रभाव से हम लोग यहां टिके हुए हैं, देखो कोई राक्षस आ रहा है कि यहां पर नहीं आ रहा है ना, आपको पता नहीं है कि क्यों नहीं आ रहा है, हम बता दें आपको, आप इनको निकालने की बात करें, इनकी कथा सुनो, इनके महाप्रताप की कन्या के महाप्रताप के बारे में सुनो। तो वो जो ग्वाल बाल थे उन्होंने ये कहानी बताई उस प्रसंग में, सब लोग फिर एकदम उत्सुक हो गए, क्या क्या भाई क्या कथा है बताओ। तो बोले कि जब भी हम लोग आए थे ना वहाँ पर, वहाँ से निकल के नंदगांव आने के लिए, बरसाना आने के लिए, नंदगांव आने के लिए सब निकल गए वहाँ से, और बहुत दिन तक यात्रा करते करते फिर हम लोग राज्य को यहाँ से लेके यहाँ बसा लिया। उसके तुरंत बाद कंस ने राक्षस भेजे गोकुल में, तो लौट के आए, बोले कि बाबा कंस महाराज यहाँ पर कोई है ही नहीं, किसको मारे हम, नो बडी इज देयर, एवरीथिंग इज एम्प्टी हियर। तो कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहाँ गए, ओवर नाइट कहाँ चले गए। तो उनको लगा कि भाई कहीं नंदगांव गए होंगे शायद। तो उन्होंने अपने सेनापति को भेजा, उनका नाम था हाउ बुलाऊ, बड़ा अजीब नाम है ना उनका। दो पिताजी और दो बालक ऐसे थे, वो चार जन आ गए ढूंढे ढूंढे, और उनको बताया था कि ऐसे ऐसे नीला रंग का बालक है, एक सफ़ेद रंग का है, भूरे रंग का, और वो मुरली बजाता है और ये हल धारण करता है और खेलते रहते हैं सब हमेशा। तो दिखाई पड़े उनको, अरे दो बालक हैं, बहुत सारे संगी हैं उनके, खेल रहे हैं, वही हैं बालक वो, बोले उनको मारने का आदेश तो मिला है हमको। तो उनको तुरंत जाते हैं पकड़ने के लिए, तो पकड़ते ही जब ऐसे हाथ लगाते हैं उनको स्पर्श करते हैं तो तुरंत पत्थर बन जाते हैं, एकदम विशाल पत्थर, बहुत भयंकर दिखने वाले। हाँ, तो उन पत्थरों को जो ऐसे विचित्र रूप में थे ना वो चार, तो यशोदा मैया ने आगे जाकर कृष्ण बलराम को डराने के लिए उनका उपयोग किया। हर चीज़ यहाँ पर सेवा में लगती है। राक्षस लोग पत्थर भी बन गए तो भी सेवा में लग गए। लेकिन गड़बड़ ये हुआ कि ये चार लोग गए थे और लौट के नहीं आए। अरे जो जाता है वो लौट के आता ही नहीं है। वन वे ट्रैफिक, यहाँ से मथुरा से निकलता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है, आपस ही नहीं आता है, खाली उसकी मौत की खबर आती है बस लौट के। तो कंस को बड़ा परेशानी हुई, क्या बात है, मैं खुद जाके देखता हूँ। तो खुद आया। अभी कंस का जो हम लोग वर्णन पढ़ते हैं ना भागवत में, बालक भी जानता है, भगवान ने उसको ऐसा घसीटा सिंहासन से, एक मुक्का मारा छाती पे, मर गया बेचारा वो, उधर ही ढेर हो गया, तो कमजोर हो गया वो, शायद कमजोर रहेगा बहुत। अरे बालक ने एक मुक्का मारा मर गया वो, लेकिन ऐसा नहीं था प्रभु जी, ऐसा नहीं था वो। ये गर्ग संहिता में पूरा अध्याय पूरा दिया है उसका, बहुत लंबा चौड़ा, कंस का दिग्विजय, और कंस ने सारे राक्षसों को अपने वश में कर लिया था, जा जाकर चुनौतियां दे देकर उनको वश में किया था उन्होंने। पूरा लंबा चौड़ा वर्णन है उसका, बहुत सुंदर भी था, समय नहीं उसका। लेकिन जितने राक्षसों को भगवान ने मारा वो सबको कंस ने परास्त किया था, और परास्त करके नौकर बना के रखा था, मतलब मांडलिक बोलते हो, मांडलिक मतलब क्या है तो दोस्त लेकिन टैक्स भरना पड़ता है। इस तरह से उन दोस्ती बनाने को, तो तब लोग शरण आ गए उसके, शरणागति स्वीकार कर ली राक्षसों ने कंस की, बोले मत मारो, क्या चाहते हो, बोले पैसा भरो और दोस्त बनो, तो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने सब लोग, तृणाव्रत वरिष्ठासुर जितने भी नाम लोग, केशी और सब लोग, पुतना भी आई, तो बोले पुतना तुम तो स्त्री हो तो मेरे बहन बनो। हाँ, क्योंकि बकासुर और उसको अघासुर को उसने परास्त कर दिया था, तो वो देखकर पुतना बहुत गुस्से में आई, बोले मैं भी देखती हूँ उसको, तो बोले नहीं नहीं तुम मेरे बहन बन जाओ, ये मेरे भाई बने, तुम मेरे बहन बन जाओ, थोड़ा बात नहीं, हमसे युद्ध नहीं करेंगे हम। और इन सबका नेता था नरकासुर, वो प्राग ज्योतिषपुर नाम का जगह है, गुवाहाटी आज नाम है उसका, आसाम में है वो, वहां पर ये सब लोग जो थे वो नरकासुर के नेतृत्व में रहा करते थे, और ये सब लोग को चैलेंज किया कंस ने जाके वहां पर। तो ये सबका अघासुर बकासुर जैसे भयंकर राक्षसों का पराभव देखते हुए नरकासुर ने बोला अभी हम लोग लड़ते नहीं, हम लोग दोस्ती ऐसे बना देते, काय को लड़ रहे हैं आप लोग। तो नरकासुर ऐसे ही मित्र बन गया उसका, ऐसा दिग्विजय था वो, चक्रवर्ती सम्राट था कंस, सब राक्षस दुनिया भर के थे, सिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाले, भयंकर सिद्धियां थी उनके पास, वो सब थर थर कांपते थे कंस के सामने, उसके खड़ को निकालते वो बिल्कुल कांपते थे सब लोग, इतना शक्ति था उसके अंदर, बहुत भयंकर राक्षस था वो। और वो कैसा था, बाकी सब लोग दिखने में कार्य में बहुत अच्छा अद्भुत था, विचित्र थे सब लोग, लेकिन कंस एकदम सोफिस्टिकेटेड था, मतलब वेरी सोफिस्टिकेटेड डीमन, जैसे रावण कैसा था, जन्म से ब्राह्मण, सारी विद्या तपस्या किया हुआ, सब नीति शास्त्र सब पता था उसको बड़ा, लेकिन सब होते हुए भावना राक्षस की थी उसकी, वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटी। हाँ, वैसे कम थे, इसलिए अपनी बुद्धि से अपनी कुशलता से राज्य को चलाते थे, सब राक्षसों को वश में किया था उसने, यहाँ तक उसकी शक्ति थी कि अपने बहन के शादी में जो भी गड़बड़ हो गया ना, आकाशवाणी वगैरह हो गया, तुरंत हमला कर दिया, पिताजी को अरेस्ट कर दिया उसने, और जबरदस्ती राजा बन गया वो, इतना शक्तिशाली था वो। पिताजी भी कुछ नहीं कर पाए, कैद हो गए, अंदर जेल में चले गए वो। एक झटके में ऐसा विचार करते करते सब बाजी पलट लिया उसने पूरा, और इतना भय था कि अभी तक वो वर्णन आता शास्त्र में कि मथुरा नगरी में कृष्ण के जन्म के बारे में कोई चर्चा नहीं करता था, भय के मारे। इट वॉज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक इन मथुरा, द बर्थ ऑफ कृष्णा, वेरी सेंसिटिव, हाईली अलर्ट टॉपिक, नोबडी कैन डिस्कस दैट। इतना डर था लोगों को, कोई बात नहीं करते थे, क्योंकि वही तो था ना उसका काल, क्या आकाशवाणी हुई थी ना उसका वध होने वाला है। तो वो कंस चक्रवर्ती सम्राट जो है अभी खुद निकला है कि मैं खुद जाके देखता हूँ वो कहाँ चले गए सब लोग। लेकिन जैसे ही हमारे कंस महाराज चक्रवर्ती सम्राट बरसाना के बॉर्डर में प्रवेश किया उन्होंने, तो एक अद्भुत घटना हो गई, एकदम अद्भुत। कोई जानता है क्या हुई? जैसे ही वो सीमा में प्रवेश कर गया, वो कन्या बन गया, स्त्री बन गया, ये बिकेम अ गर्ल। अब सोच सकते हैं आप, इतना चिलखत पहन के और वीर बन के और शस्त्र धारण करके वो आ रहा है, अचानक देखता, अरे क्या हो गया, कन्या हो गया। ही वाज सो एम्बैरेस्ड, इतना संकोच हुआ उसको, अरे क्या गड़बड़ हो गया, मैं कहाँ जाऊँ, मथुरा जाऊँ तो गड़बड़, यहाँ रहूँ तो भी गड़बड़, किसको मुँह दिखाऊँ, क्या करूँ, मैं सबका राजा मैं हूँ ना, वहाँ जाएंगे तो लोग हंसेंगे, यहाँ पर भी हंस रहे हैं, सारी सखियाँ गोपियाँ तालियाँ पीट पीट कर हंस रहे हैं, अरे वाह वाह बढ़िया काम हो गया, ये सबसे बढ़िया काम हो गया। परेशान हो गए सब लोग, मैं कंस परेशान हो गया, सब लोग हंस रहे हैं उसको, तालियाँ पीट रहे हैं, और गाँव की गंवार लड़कियाँ हंस रही हैं, जैसे कोई मुंबई से मर्सिडीज गाड़ी में कोई साहब आ गया और समझो गोबर में फिसल गया। तो तब लड़कियाँ आओगे, लड़के हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे, अरे सब साहब का कोट पूरा गोबर से भर गया। वैसे ही तो मथुरा का साहब आया ना, और वो गोबर में तो भी चलता है, को धो सकते हैं उसको, नया कोट पहन सकते हैं, ये कि अंदर का मामला कैसे चेंज करें उसको। चेंज नहीं कर सकते वो वस्त्र को, बदली हो गया तो परमानेंट हो गया वो। तो बेचारा कंस जो है ना, इतना बड़ा उसका सम्मान था, इतना उसका ईगो था, अहंकार था, अपने पद का, बल का, शक्ति का, सब कुछ था उसको, परेशान हो गया वो, विनम्र बन गया एकदम। जैसे होता ना कोई ऐसा बड़ा कंपनी का मालिक होता है, उसके कंपनी में आप किताब बेचने जाओगे या डोनेशन मांगने जाओगे तो बोलेगा जाओ निकल के, अब टाइम नहीं है, इसको बोलो जाओ, तुम्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन वही व्यक्ति जब बीमार पड़ता है ना, जब अस्पताल में आता है ना, पेट में दुख रहा है, सिस्टर जल्दी ठीक करो, एकदम उसका भाव जो है ना ऐसा पूरा जमीन पे आ जाता है, क्योंकि अस्पताल में वो बीमार होकर आता है ना, तभी वो किसी कंपनी का CEO बन के नहीं आता है उधर। तो वैसे हमारे कंस महाराज दरबार में बड़ा रुबाब से थे, लेकिन यहाँ पर अभी किसको क्या कर रहे हैं, अभी वो एकदम हाथ जोड़ के गोपियों की माफ़ी मांगने लगे, अरे कुछ करो गोपियों, कुछ करो, हंसो मत, मेरी दयनीय अवस्था हो गई है, आप लोग तालियां पीट रहे हो, मेरा क्या बीत रहे हैं, मुझ पर समझो मेरी बात को। तो गोपियां कह रहे, अच्छा है तुम्हारे लिए, तुमने बहुत आतंक मचाया, हमारा जीवन को इतना संकट में डाला आपने, अच्छा हो गया, जो भी विधि विधान के रूप विधाता के तरफ से आपको शिक्षा मिली है, दंड मिला है, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। तो बोले क्या करूँ बताओ, कुछ तो बताओ उपाय, कुछ तो करो मेरे लिए। बोले कुछ नहीं, आपको अभी गोबर के कंडे लिपने हैं, हमारी गाय गोबर डालेगी, उसको इकट्ठा करना है, ब्रज रज में मिलाना है, उसको मिक्सचर करके अच्छा केक बनाना है उसका, और पेड़ों में पहाड़ों में टीलों में उसको सुखाना है, शाम को जाना है, उसको इकट्ठा करना है, टोकरी में डाल के घर पे लेके आना है, स्टॉक में रखना है, फिर घर पे आने के बाद गाय का दूध निकालना, गाय के चरण धोना, गौशाला को साफ करना, ये सब करना है आपको, और कोई चारा नहीं, यहाँ पर हम लोग सब यही करते हैं, अभी तुम भी बनो, क्योंकि वो भी बनी थी कंसनी गोपी। हाँ कंस नहीं रहे वो अभी, वो कंसनी गोपी बन गई ना, तो क्या करें, सब लोगों ने बोला कि आपको आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको आपको यही करना है। हरे कृष्णा। तो फिर 6 महीने तक ये रोते रहे, रोज रोते रहे, पैर पड़ते रहे गोपियों के, लेकिन गोपियों ने एक नहीं मानी, 6 महीने उनसे कंडे लिपवाए। कंस भरा जो त्रिणावर्त के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके थे, अरिष्टासुर को परास्त कर चुके थे, हाँ नरकासुर को ऐसे ही वश में कर लिया उसने, पुतना बकासुर सबको वश में कर लिया। वो अभी क्या कर रहे हैं, गुप्त रूप में नंदगांव बरसाने में कंडे लिप रहे हैं। बहुत रोए बेचारे, बहुत रोए, बहुत रोए। तो 6 महीने के बाद फिर गोपियों को बहुत दया आई उसकी, अरे बेचारा अभी तो सुधर गया है, पहले बिगड़ा हुआ था अभी सुधर गया है, चलो कुछ तो करो। उन्होंने बहुत रोके, गिड़गिड़ा की विनती किया उनको। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी महारानी को मिलाते हैं। हाँ, तो राजा रानी को मिलने को लेके जाते हैं। तो राजा रानी कीर्ति मैया के संग में आई हुई है और वो कहते हैं, गोपियाँ देखो ये कंसनी गोपी जो है बड़ी दुखी है, इसको कुछ इलाज करो इसका। तो कीर्ति मैया कहती कि बड़ा नम्र हो गया अभी बेचारा, वो अभी आगे गलती नहीं करेगा। राजा रानी कहती है, दोबारा बरसाने में आओगे तो परमानेंट लड़की बनोगे, याद रखना। दोबारा यहाँ पर प्रवेश नहीं करना है आपको। अभी आ गए, 6 महीने हो गया पीरियड आपका, बच गए आप, चलो। तभी जावट में थी वो, और जावट में उधर किशोरी कुंड है बहुत सुंदर, वहाँ पर वो नहाती है रोज। उन्हें कहा, ये मेरा कुंड है, इसमें छलांग लगाओ और तुरंत पुरुष देह को प्राप्त करोगे, और यहाँ पर लौट के जाना है, दोबारा नहीं आना है। तो कंस ने अपने जो अवस्था में था उसी में छलांग लगाई तुरंत किशोरी कुंड में, और फिर कंस महाराज बन गए वो। और वो गीले वस्त्र में जो भागे सीधे मथुरा तक, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा नहीं उन्होंने, क्योंकि पीछे मुड़कर देखा और महारानी का भाव बदली हो गया, तो माइंड चेंज हो गया, तो क्या करेंगे फिर कौन से कुंड में छलांग लगाएंगे। इसलिए मुड़के भी देखा नहीं उन्होंने, और कभी उनकी हिम्मत नहीं हुई किसी राक्षस को भेजने की और खुद आने की। ये कारण है उसका। इस तरह से भगवान ने वो वातावरण पैदा किया कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा। तो बाकी सब उसके बाद में भी आते रहे, वृंदावन में आए, मधुबन में आए, तालवन में आए, सब जगह पर सब लोग आते रहे। राधा कुंड की जगह पर आए, गोवर्धन में भी आए, सब जगह पर हर वन में राक्षस आते रहे, उनका वध भी होता रहा। लेकिन राक्षस भेजने की हिम्मत ही कंस की नहीं हुई यहाँ पर महारानी जी के पास। ऐसा श्री जी महारानी का प्रताप है। और ये कथा सब ग्वाल वालों ने उस सभा में सुनाई कि इनकी बेटी महाप्रतापी है, इसलिए आप लोग यहाँ पर टिके हुए हो, इसलिए ये सब बेकार की बातें मत करना इनको निकालने की। तो ये सुनते ही सब शांत हो गए, नंद बाबा और का गुस्सा भी भूल गए और बैठक समाप्त हो गई, किसी को किसी ने हद्दपार नहीं किया। हाँ, तो ये सब क्यों करते भगवान? क्योंकि वो अपने अंतःपुर का जो भाव है उसको बनाए रखना चाहते हैं, जो चटपटा। हाँ, यहाँ पर भगवान बूढ़ी औरत बनते हैं, यहाँ पर कंगन बेचने वाली बनते हैं, यहाँ पर फूल बेचने वाली बनते हैं, यहाँ पर ज्योतिषी बनते हैं, हाँ यहाँ पर ब्रह्मचारी बनते हैं, यहाँ पर क्या नहीं बनते। वो भगवान राधा रानी के विरह में व्याकुल होकर उनको छोड़कर रह सकते नहीं है वो, और आना है बरसाने में तो सखी बनकर ही आना पड़ेगा। यहाँ पर सब लोग सखी बनते हैं, शिवजी महाराज भी आए तो भी सखी बने, गौरी ने उनका श्रृंगार करके भेज दिया उनको, जाओ भाई यहाँ पर सब लोग सखी बन के आते हैं, यहाँ पर कोई पुरुष नहीं है। तो राधा रानी के संग के अभिलाषा में ये भी अलग अलग भेष धारण करके वहां पहुंचते हैं। तो ऐसी एक लीला है जो आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार की लीलाएं वहां पर होती है, जिसके कारण वो राक्षसों को आने को यहाँ पर मना कर दिया उन्होंने। मतलब व्यवस्था ऐसे बना दी लीलाओं के माध्यम से कि राक्षस कोई आने का हिम्मत ही नहीं करे। तो ऐसे ही एक बार गोपियों को बहुत तंग किया भगवान ने, बहुत दिन तक करते रहते वो, उनका तो धंधा ही वही है, दिन रात गोपियों को तंग करना, उनका माखन चुराना, उनको परेशान करना। मिलने को जाते हैं तो क्या है, बात करते करते ऐसे मोहित कर देते कि भाई यहाँ का मणि निकाल देते, कभी यहाँ का मणि निकाल देते, कभी गले की माला निकाल देते, कभी कुछ कर देते हैं। और जब मिलके चले जाते हैं गोपियाँ तो दिखता है कि ये मणि गायब, ये मणि गायब, ये माला गायब, रत्नमाला गायब, क्या है, रोज का चक्कर है। रोज मैया पूछती है, कहाँ गया श्रृंगार तुम्हारा? बोला पता नहीं कहाँ गया। और कभी इनके जेब में हाथ डालते तो उनको जेब में मिल जाता है, और बोलते हैं कि अरे पता नहीं, मेरा हाथ जो है वो मेरे नियंत्रण में है ही नहीं, वो कभी कहाँ चलता है, कहाँ से क्या निकलता है, मुझे पता ही नहीं चलता है, ये मेरे वश में नहीं है, मेरे जेब में आ जाता है तो आप निकाल लो, आपका हो तो ले लो आप, मुझे कोई परेशानी नहीं है। रोज का नाटक है, रोज का ढोंग है, रोज का छल है, रोज का सब कुछ छद्म है। तो गोपियां परेशान हो गए थे, बोले एक बार उनको सबक सिखाते अच्छी तरह से। रोज का झगड़ा है, कोई माखन बेचने गए तो उसको मटका फोड़ देना है, वो आतंक करना है ना, अटैक आके रोक देते हैं उनको, क्या कर सकते हैं। एक दिन उन्होंने अच्छा योजना बनाया, नेता कौन है उसका नेता योजना बनाने का, गोपियों की तरफ से योजना कौन बनाते हैं, यस ललिता देवी द लीडर। नजरानी बेचारी भोली है बहुत, वो सब ऐसा योजना नहीं बना सकती है, ललिता जी सब प्लानिंग बनाती है, फिर वो हाँ में हाँ बुला देती है, हाँ ये बढ़िया है। वो तो झगड़ा वगड़ा होता है ना कभी, तो राधा रानी बहुत तुरंत सहमी जाती, रोने लगती है, तुरंत ललिता जी सामने आती है, एकदम शील्ड ऑफ कृष्ण राधा रानी। तो योजना बनती है कि अभी हम क्या करेंगे, अगले दिन अभी सब माखन मिश्री सब लेके जाएंगे उनको, और जब वो रोकेंगे हमको तो बिल्कुल बहस नहीं करेंगे, तुरंत उनको खिला देंगे सब, यही नहीं बड़े बड़े पंच पकवान घर से बन के लेके जाएंगे, और जैसे रोकेंगे तो हम लोग कुछ विवाद नहीं करेंगे, तुरंत उनको खिला देंगे सब, और फिर उसको सुला देंगे, इतना खिलाएंगे कि सुला देंगे। बड़ी योजना बनती है, नेक्स्ट सब गोपियां आती हैं, एज यूजुअल उनको रोका जाता है उधर, और बोलते हैं हमारे एरिया से क्यों जा रहे हो, तो वो बाधाएं कुछ डिस्कस ही नहीं करते, तो बोलते आ जाओ बैठ जाओ सब तुम्हारा ही है। तो बोला अरे वाह आकाश में तारे आज कौन सी दिशा में आए हैं, ये तो सब बढ़िया है, क्या सूरज पश्चिम में हुआ है क्या, आज इतना बढ़िया वातावरण और गोपियां इतनी अनुकूल भावना में हो, कोई चक्कर ही नहीं, कोई झगड़ा ही नहीं, सब लोग तुरंत बैठ जाते हैं फटाफट, सब गोपियां उनको प्रेम से, अरे ये खाओ अरे वो खाओ, अरे तुम्हारे लिए बनाया ये इसके घर से बनाया इसके घर से बनाया, इतने आइटम है कि वो बिचारे खाते 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 थक जाते हैं पूरे, पहले बैठे हैं फिर एक हाथ जमीन पे लेटते हैं, फिर थोड़ा पैर भी ऊपर लेते हैं, फिर थोड़ा आधा लेट जाते हैं, आधा लेट के खा रहे हैं, फिर भी गोपियां कह रही है अरे मेरे घर का तुमने तो खाया ही नहीं, ये खा लो उसको खा लो, तो खाते खाते वही लेट जाते हैं, फिर भी वो खा रहे करके मुंह में डाल रहे हैं उसके, जरा पेट उसका भरता है, इतना भर जाता है, सब सखा लोगों को इतना खिलाते हैं कि सब सो जाते हैं उधर ही, उठने की शक्ति नहीं उसके अंदर, और जब गहरी नींद में सो जाते हैं तो सब चेक करते हैं कि भाई फुल्ली ना फुल्ली असलिप सो जाते हैं, तो सारा उसका जो अलंकार है नख से लेकर सर तक पांव तक सब जितना भी अलंकार माता ने करके भेजा है सारा उतार देते हैं कंप्लीट। सबसे पहले मुरली सबको बड़ी प्रिय है, वो तुरंत पहला चुरा लेते हैं उसको, बाद में सब। तो मोर पंख है, सोने की जंजीर है, नाक का मणि है, इधर का मणि है, कान के कुंडल है, गले का हार है, कमर काचनी है, जितना भी घुंघरू है, वो मैया जो है ना वो उनको तीन तीन बार कसकस के बांधती है वो घुंघरू को, क्योंकि ये जब नाचते हैं ना नटराज, दो दो मील उसका घुंघरू उड़ जाता है, और तीन बांधे हैं तो दो ही मिलते हैं, मैया पूछते तीसरा कहाँ गया, बोलो पता नहीं जंगल में कहीं गिर गया होगा। सारा उतार देते हैं और लेके चले जाते हैं। बहुत घंटे बाद में महाराज को जाग आती है, जग जाते हैं, अब देखते तो अरे क्या है सब गायब, एवरीथिंग इज ऑन, अरे मुरली कहाँ है, अरे जंजीर कहाँ है, क्या किधर कुछ भी नहीं मिल रहा है। बहुत सोचते हैं तो अंतर्ध्यानी तो है ही, वो सोचते हैं कि अरे हाँ सब गोपियों ने आज सबको चकमा चला दिया पूरा, हाँ हमको आज बुरा उल्लू बना दिया, कोई बात नहीं हम भी चोर शिरोमणि हैं, हम भी सबक सिखाएंगे उनको। घर पे चले जाते हैं, मैया पूछते क्या है तुम्हारा, किधर है तुम्हारा श्रृंगार, एक भी चीज तुम्हारे ऊपर नहीं है, क्या करते क्या हो तुम। बोला मैया कुछ नहीं, आज ऐसा एक हादसा हुआ है, कोई बात नहीं आप चिंता मत करना, कल तब सामान लौट के आएगा पूरा, आप डोंट वरी अबाउट इट। जैसे आप जाते हैं पुलिस में, अभी आपसे यूपी में वृंदावन में समझो आपके घर में चोरी हो गई है, तो आप जाओ पुलिस स्टेशन पे उनको बोलो, तो बोलेंगे कोई बात नहीं चिंता मत करो मिल जाएगा, आप कितना दोगे, तो बोलेंगे कितना देंगे, तो 10,000 दे दो या आधा दे दो, आधा जो मिल जाएगा उसमें आधा दे दो मिल जाएगा आपको, तो अगले दिन आपको पूरा ला के देते हैं वो, क्योंकि तो उनका सेटिंग पूरा ऐसा होता है ना, उनका पूरा मालूम होता है कौन चोर है यहाँ के, कौन कौन क्या क्या करते हैं, सब सेटिंग रहता है उनका, और बिजनेस करते रहते हैं वो। उसी तरह से भगवान ने एकदम विश्वास के साथ में बताया, माता चिंता मत करना कल तक सामान आ जाएगा। तो दूसरे दिन अचानक एक कन्या भाग माता के सामने आती है, बड़ा घूंघट ओढ़ के इतना श्रृंगार करके बढ़िया सा एकदम। तो मैया कहती है कि अरे कौन लड़की है ये, कौन गोपी, नई नई भाई है क्या नंदगांव में। तो वो बड़ी आश्चर्यजनक होती है, इतना लंबा घूंघट मार के यहाँ तक, बड़ी नई नई भाई होगी, जितना लंबा उतना नई, उतना छोटा उतना पूरा नहीं। तो वो आश्चर्य करती है, पूछती है बाकी सखियों को कौन है ये, कौन से घर भाई है ये लड़की। तो अचानक वो लड़की गूंगा उठा दिए, मतलब मैया मैं हूं। अरे अच्छा, मैंने भी नहीं पहचाना तुमको। हाँ मैया, आज बरसा में जाना है ना मिलने के लिए, इसलिए हम सखी बन के जा रहे हैं। अरे मैं भी नहीं पहचान पाई, इतना बढ़िया श्रृंगार तुम्हारा किसने किया? बोले कर लिया हमने ऐसा ही श्रृंगार आज बढ़िया से, उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम पे जाना है। तो वो गए वहां से, मैया का दंडवत किया, जल्दी लौट के आना। फिर गए बरसाने में, आए तो ऐसे ही बरसाने में आते ही चालू उनका ड्रामा पूरा। बोले कृष्णा, ऐसे करके एकदम बेहोश हो गए, पूरा गंगट मार के रखा है ना, तो श्यामा सखी बने हुए हैं। तो जाते हैं कन्हैया बेहोश, दो सखी आई, देखे अरे कौन कन्या है ये, नहीं नहीं भाई लगती है, पता नहीं कितना प्रेम है उसके हृदय में, दो आई, चार आई, 14 आई 15 आई 20 आई, हर बार वो उसको हवा दे रही है, जल छिड़क रही है उसके ऊपर, अरे उठो उठो। तो उठते ही वापस शाम, फिर बेहोश। अरे और चार इकट्ठा हो गई, बाप रे बाप, इतना प्रेम तो हमारे अंदर भी नहीं है, व्याकुल हो गए सब लोग, अरे तो मर जाएगी ऐसे ही, ये सोच ही रहे हैं। तो दोबारा उठी और दोबारा शाम सुंदर, फिर बेहोश। ऐसे करते करते हजारों सखियां इकट्ठा हो जाती है, इसका भाव देखकर सब व्याकुल हो जाती है, इतना भाव तो हमने कभी देखा नहीं किसी। करते करते वो चढ़ रही है पहाड़, पहाड़ चढ़ते चढ़ते गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, सब सखियां इकट्ठा हो रही है और दूर दूर से आ रही है, अरे देखो देखो नई सखी आई है कोई। तो आखिर में ऐसे गिर जाती है ना, जब पुकारती है इतने रोर से गिर जाती है, बहुत देर तक उठती नहीं, क्या क्या कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं उसके लिए, क्या मंत्र बोल रहे हैं, ब्राह्मण को बुला रहे हैं, क्या दवा छिड़क रहे हैं उसके ऊपर, जल छिड़क रहे हैं, उठने का नाम नहीं ले रही। कुछ लोग रुई लेते रुई, और रुई का रेश निकालते और नाक पे लगाते, नाक में भी हवा नहीं हिल रही है, अरे मर तो गई नहीं कम से कम, पता नहीं कैसे होना है, नहीं 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 थोड़ा थोड़ा हिल रही है, थोड़ा रुई थोड़ा हिल रहा है, थोड़ी जान है अभी, पता नहीं कब छोड़ेगी जान। तो अभी तो फिर कैसे करें, सब ललिता विशाखा सब इकट्ठा होते, नेता लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बोलते क्या करेंगे अभी, इसका कुछ तो करना चाहिए, तो मर जाएगी ऐसे विरह में, इतनी व्याकुल हो रही है, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो कुछ लोग लगे हैं उसमें हवा देने में, कुछ लोग मीटिंग करते हैं, ललिता विशाखा और प्रधान सखियां, बोलते एक ही उपाय हमारे पास, बिना शाम को मिले हुए इसका विरह नष्ट नहीं हो सकता है, और कोई उपाय नहीं, शाम के बिना ये नॉर्मल नहीं हो सकती है। शाम तो नंदगांव में पता नहीं कहाँ है वो, लेकिन हमारे पास शाम का चुराया हुआ सामान तो है ना पूरा, तो हम राधा रानी को शाम बना देते हैं, ये बढ़िया आइडिया है। और राधा रानी कृष्ण के सब तरीके जानते हैं, कैसे खड़ा रहता है, कैसे बात करता है, कैसे उसका तरीके सब मालूम है उसको, तो हम उसको ऐसा पेंटिंग वेंटिंग कर देंगे, बिल्कुल शाम सुंदर ही बना देंगे पूरा, सारा श्रृंगार तो हमारे पास है ही उसका, कल ही लाया था हमने, कोई बात नहीं सब। फिर वो कुछ लगे वहाँ पर हवा देने के लिए, तुरंत बाकी सब भागते अंदर, जाओ श्रृंगार करो इनका तुरंत। राधा रानी को योजना बनाते हैं, बोलते हाँ बराबर है, इसका जान बचाने के लिए करना ही होगा कुछ। और फिर राधा रानी को सज सज कर बाहर ले आते हैं। राधा रानी श्याम सुंदर बनी हुई है, हाँ मुरली धारण किया हुआ है, मोर पंख लगाया हुआ है, पीताम्बर पहना हुआ है, खड़ी हो गई ऐसे त्रिभंग अवस्था में, हाँ गला भी ऐसा टेढ़ा हुआ, कमर में भी टेढ़ा, एक पैर रखा ऐसे, और मुरली बजा रही है, ऐसी मुरली बजती है। आप जानते हैं ना, राधा रानी ने ही भगवान को मुरली सिखाई है, भगवान बड़े मुरली वादक हैं, लेकिन मुरली बजाने को सिखाया राधा रानी ने, जमुना किनारे बैठकर उनको पढ़ाया है, लेसन पढ़ाया है जमुना, जमुना जी किनारे, तो वो तो मुरली में बहुत एक्सपर्ट है, बजा रही है। वो जैसे ही राधा रानी आती है, सखियाँ कहती है कान में, अरे सखी अभी तो उठ, देखो श्याम सुंदर जी आए हैं, तुम्हारे प्रियतम जिसके लिए तुम तड़प रही हो वो तुम्हारे साक्षात सामने खड़े हैं। तो ये हिलते नहीं है, फिर वो मुरली बजाती है, जैसे ही मुरली की तान सुनते हैं पूरा घूंघट ओढ़कर पूरा उड़ जाते हैं, देखो पकड़ा ना तुमको, पकड़ा कि नहीं, पूरा श्रृंगार के साथ पकड़ा ना, बहुत होशियार समझते हो अपने आप को, उतारो सब सब उतारो, वापस करो। आप लोग सखियां समझते हो कि आपने मुझे उल्लू बना लिया, हाँ बहुत खिला पिला के सब आपने सबक सिखाया मुझे, लेकिन मैं भी नंदगांव का नंद का चेला हूँ, नंद का बालक हूँ। सब कुछ सखियों ने सर नीचे झुकाया शर्मिंदगी में, इतने सखियों के साथ में अकेला कृष्ण जो है ऐसी बात करते हैं, सब लोग सर झुका देते, और चुपचाप जाकर राधा रानी का जो श्रृंगार किया करने वाले थे वो जाते हैं, पूरा श्रृंगार उतारते हैं और नंदलाला को सौंप देते हैं। बड़े ऐट के साथ में सबको नज़र देते हुए घर चले जाते हैं, थोड़ा दोबारा मत ऐसे करना, हाँ और अधिक दंड दूंगा आपको। तो ऐसी लीला अगर करनी है तो राक्षस का बीच में बाधा कैसे आ सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल ना। समझो वो अभी श्यामा सखी बनकर उनका ड्रामा चल रहा है, समझो वहां से आ गया अरिष्टासुर, तो सब लोग बोलेंगे कृष्ण कृष्ण महाबाहु किधर हो, अरिष्टासुर हमको कष्ट दे रहा है, तो श्यामा सखी का भेष छोड़ के जाएंगे ना मारने के लिए उसको, तो लीला भंग हो जाएगी ना बीच में। इसलिए यहाँ पर वो राक्षसों का आतंक वगैरह होता नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर सुंदर। और राधा रानी बीमार पड़ जाती है तो इनको खबर मिलती है नंदगांव में कि ये बीमार पड़े हुए, तो ये वैद्य बन कर जाते, सीधे कमरे में घुसते हैं, बोले बड़ा वैद्य है, बड़े दाढ़ी वाड़ी लगा कर आते हैं, बड़े बहुत बुजुर्ग है, वो तजुर्बेकार है, वो चलने को भी नहीं हो रहा, इतना तजुर्बा है, इतनी उम्र हो गई इनके, ऐसे आते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, तुम्हारा मरीज जो है उसको हमको एकांत में मिलना है, कोई भी और अंदर नहीं आना चाहिए। तो सब सखियाँ ब्रिशभानु कीर्ति मैया सब बाहर और बंद कमरे में अकेले वो नब्ज देख रहे हैं राधा रानी की, और इलाज बताते हैं कि इनको केवल श्याम सुंदर की बूटी चाहिए, बस वो ठीक हो जाएंगे। तो फिर वो पेटा निकालते हैं, दाढ़ी निकाल के दिखाते हैं, मैं ही हूँ, चिंता मत करना, थोड़ा दादा रानी ठीक हो जाती है। उनका रोग क्या था? उनका रोग तो श्याम सुंदर का विरह था, श्याम सुंदर जी वैद्य बनकर अंदर आए तो फिर ठीक हो गई वो, फिर दाढ़ी वाड़ी लगाया बाहर आए, बोलते कोई चिंता मत करो, हमारे मरीज का इलाज कर दिया मैंने। सब लोग उसको वैद्य को देखकर इतने खुश हो जाते हैं, अरे उसको गाय दान दो, उसको अलंकार दो, उसको बनी दो, मोती दो, उसको धान्य दो, उसको दक्षिणा दो, क्या करो इनके लिए। हाँ वैद्य जी यहीं रहना बरसाने में, जब भी हमारे श्री जी बीमार हो जाएंगे तो उसका इलाज करना। बोले हम एक जगह रहते नहीं हैं, हम सब घूमते रहते हैं, जब चाहे तब बुला लेना, आ जाएंगे हम। कभी वो पामिस्ट बन जाते हैं, हस्त सामुद्रिक पढ़ने वाले, तो सब सखी आके पूछते हैं हमारा हाथ देखो, हमारा हाथ देखो, हमारे हाथ में कौन पति लिखा है? वो देखते हैं सबका हाथ, बोलते हैं तुम्हारा सबके हाथ में एक ही पति लिखा है। सबके हाथ में एक ही पति है, एक ही व्यक्ति तो सबका पति बनने वाला है। हाँ सब लोग शर्मा जाते हैं, जानते हैं उनके सबके मन में कौन है। इस तरह से अनेक भेष धारण करते हैं वो। एक बार वो ऐसी गोपी बनकर आते हैं, वो उसकी वर्णन गड़गर की संहिता में दिया है, क्या नाम उसका, गोप देवी है ना, गोप देवी की कथा आती है ना उसके अंदर, गोप देवी बनकर आते हैं और नई देवी है ना वो, कोई नई पहचान की गोपी है, नई मतलब पहचान नहीं उसकी, नई गोपी है वो। तो राधा रानी के साथ बैठती है और राधा रानी को उसके संग में ऐसा इतना आनंद का अनुभव होता है, तो कहते हैं कि तुम तो ऐसी गोपी हो कि तुम मुझे श्याम सुंदर के संग की याद दिलाती हो, श्याम सुंदर के संग की मुझे तुम याद दिला रही हो, तुम्हारे पास बैठने से मुझे जैसे लग रहा है कि श्याम सुंदर के साथ ही बैठी हूँ। बोला अच्छा कौन है ये श्याम सुंदर? कहते नंद बाबा का लड़का है और उससे हमें प्रेम है, तो वो उसकी निंदा करने लगती है, बोले श्याम सुंदर बहुत काला कलोटा है, बहुत छदमी है, सबको फंसा देता है, उस पर प्रेम मत करना, वो तो बहुत धोखा देने वाला आदमी है, कहीं भी दिल लगाना नहीं उसके ऊपर, उसकी निंदा करने लगती है। तो राधा रानी को बहुत असह्य हो जाता है, बोले कैसे कैसे बोल रही हो, तो कृष्ण का गौरव करना शुरू कर देती हो, अरे उसने गिरिराज को उठाया है, उसने ये किया है, उसने वो किया है, वो सबके दिल को आनंद देने वाला है, भूमि को आनंद देता है, सब देवता उसके पीछे हैं, और सब गौरव करने लगती है। जितना गौरव करती है उतना वो गोप देवी जो है उसका काट देती है उसको। तो आखिर में राधा रानी को रहा नहीं जाता है, राधा रानी बहुत व्याकुल होकर बात करने लगती है। वो राधा रानी का प्रेम जो है वो देखकर वो गोप देवी बहुत परेशान हो जाती है, मतलब ऐसा, क्योंकि गोप देवी स्वयं कृष्ण थे ना, वो कृष्ण गोप देवी बनकर गए थे उनको मिलने के लिए, और राधा रानी का ये विचित्र प्रकार का प्रेम का जो प्राकट्य है वो देखकर वो गोप देवी बड़ी व्याकुल हो जाती है, और अंदर से अपने गोप देवी के रूप को बनाए रखने में उनको असमर्थता हो रही है, कांपने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, प्रेम की वजह से इतना प्रेम व्यक्त कर रही है मेरे प्रति और मैं गोप देवी बनकर यहाँ बैठा हूँ। तो कहते हैं बाद में ऐसे कहती है वो कि देखो ऐसा है कि तुम कुछ भी कहो लेकिन तुम्हारा दिल किस पर लगा हुआ है वो बहुत छदमी है और तुम उसके पीछे अपना दिल मत लगाओ, ऐसा ठीक है। बोले मैं अभी उसके बारे में और कुछ बात नहीं करना चाहती हूं, अगर तुम्हारे मन में उसके लिए सच्चा प्रेम है तो मैं देखना चाहती हूं कि वो अभी तुमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं देखना चाहती हूं। अगर तुम्हारा इतना तुम्हारा उस पर दिल है तो तुम्हारे प्रेम की वजह से वो व्यक्ति तुम्हें अभी आकर मिलना चाहिए। ऐसे करके गोपदेवी चली जाती है, ड्रेस चेंज करके कृष्ण बन के उनको मिलने आती है तुरंत। तो ये भी गोपदेवी का वर्णन इसमें किया गया है ब्रह्म गर्ग संहिता में। ऐसे बहुत चटपटी लीलाएं वहां पर आती हैं। तो ये सुंदर जो लीलाएं हैं यहाँ की, साकरी कोर की लीला है, रोग मटकी तोड़ते हैं उधर, पत्थर पिघल जाते हैं उनकी लीलाओं को देखकर। हाँ, एक विष्णु पर्वत है, एक ब्रह्मा पर्वत है, राधा रानी का पर्वत है, एक गोरा रंग का पर्वत है, काला रंग का पर्वत है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये ब्रिज का, ये बरसाने का जो माहौल है, वातावरण जो है, ये दिव्य और अद्भुत प्रेम से बना हुआ है। और इसको बनाए रखने के लिए ये सब पूर्णमासी जी, ये सब सखियाँ जो है उसको बहुत मेहनत करती है। इसलिए जब ये प्लानिंग हुआ ना उनका विवाह करने का, तो पूर्णमासी ने उसको फेल कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मैंने चार्ट बनाया है उसका, वो चार्ट में देख रही हूँ कि सारे ग्रह जो है गलत जगह बैठे हुए हैं, कोई भी योग अच्छा नहीं है। योग वो की बात नहीं थी, वो उनको पता था कि अगर ये विवाह करेंगे तो रोज का कोकिल बनना, इशारे करना नंदगांव से बरसाने के मंदिर के पीछे से इशारे करना, कहाँ मिलना है, संकेत वन में जाना, वहाँ पर कभी कोकिल वन में कोकिल बनना और सबके संदेश भेजना और क्या क्या करना, वो सब खत्म हो जाएगा, तो ऑफिशियल पत्नी बन जाएगी, फिर कहाँ से छुपना और कहाँ से मिलना। तो ये पूरा बरसाने नंदगांव का माहौल ही पूरा बिगड़ जाएगा, पूरा परकीय भाव जो है वो नष्ट हो जाएगा, पूरा स्वकीय बन जाएगा, तो फिर द्वारका हो जाएगी इसकी। नहीं करना है हमको। इसलिए उन्हें बहाना बना के बता दिया कि अभी तारे जो हैं वो गलत जगह बैठे हुए हैं, ये विवाह अभी यशस्वी नहीं होगा, वो टाल देती है उसको। तो सब लोग देखते हैं कि यहाँ का जो भाव है वो बना रहे, परकीय भाव, जो अनन्य प्रेम है, जो किसी पर भी किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है, वो सारा प्रेम जो अनन्य है वो यहाँ पर प्रकट होना चाहिए, रहना चाहिए वैसे ही। यही बरसाने नंदगांव का भाव है। बोलो, हम लोग ऐसी जगह पर सेवा करने आए, समझ में नहीं आता यहाँ पर क्या लीला है, क्या रहस्य है इसके पीछे, क्या राज है, कैसा प्रेम है इनका। कोई ना विवाह है उनका, कोई संबंध है, कुछ नहीं, बट इतना अनन्य प्रेम है कि वो जीवन भी देने को तैयार है उनके लिए। तो ऐसे गोपियों के और राधा रानी के धाम में हम लोग आए हैं और उनके जो प्रिय हैं उनकी सेवा करने का मौका हमको मिल रहा है। इसलिए यहाँ वहाँ की बेकार की बातों की डिस्कशन नहीं करना चाहिए यहाँ पर, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, कैसा है कैसा नहीं है। जो सेवा प्राप्त है, जिस जगह पे प्राप्त है, जिस तरह की सेवा प्राप्त है, वो इतनी श्रेष्ठ है। यहाँ पर क्या हो रहा है हमको नजर नहीं आ रहा है, वो हमारे बुद्धि और हमारे चेतना के बाहर की वस्तुएं सब। कुछ कुछ पढ़ते हैं किताब में, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि क्या होता है यहाँ पर, लेकिन जो असल में यहाँ पर हो रहा है तो हमारे समझ के बिल्कुल बाहर है, वो हमारे दिमाग के बाउंड्री के बाहर है, वो अंदर नहीं आ सकता है वो दिमाग के, इतना अनाकलनीय है सब, इनकंसीवेबल उसको कहते हैं इंग्लिश में। तो इसलिए हमको बार बार धन्यवाद देना चाहिए कि कहाँ पर हमको सेवा मिल रही है। अभी तो अभी रूटीन चालू हो जाएगा, रोज 60 ऑपरेशन करना है, रोज सभी लोगों को भर्ती करना है, रजिस्टर करना है, तैयारी करनी है, ओटी में भेजना है, ऑपरेशन करना है, वहाँ से बाहर आके वार्ड में भर्ती करना है, फिर दवा देना है, फिर और खाना खिलाना है, रात को दर्द हुआ तो गोली देना है, इंजेक्शन लगाना है, सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर बुलाना है, फिर वही रूटीन, उनको लेक्चर देना, ओरिएंट करना, क्या करना है क्या नहीं करना है, दवाई देना है, ब्लैंकेट देना है, सॉक्स देना है, गमछा देना है, विदा कर देना है। तो आपको कुछ देर बाद बोर हो जाएगा कि रोज यही करना है, लेकिन यही तो लीला है यहाँ की। रोज यहाँ पर सेम लीला होती है, लेकिन वो हर लीला में विविधता है, हर लीला में दिव्य आनंद है, हर लीला में प्रेम है, हर लीला में ऐसी दिव्य अनुभूति है, नवायमान है सब कुछ, एवर फ्रेश एवरी सिंगल डे। तो हम उसको देखेंगे रूटीन है तो बम्बई वाले हो गए, विविधता को देखेंगे, आनंद को देखेंगे, सेवा भाव को देखेंगे, सेवा करने का मौका देखेंगे, तो आनंद ही आनंद मिलेगा आपको और आपको लगेगा कभी समाप्ति ना हो, रोज ही करते रहे इनकी सेवा, रोज उनकी मुस्कान को अनुभव करते रहेंगे, रोज उनके दुलारने का अनुभव करते रहेंगे, उनके प्रेम का, उनकी छाछ का, उनके रोटी का आनंद लेते रहेंगे, उनके प्रेम को अनुभव करते रहेंगे, उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे, तो आपके लगेगा कि आपको लगेगा कि लीला कभी समाप्ति नहीं हो। और वो समाप्ति ना हो इसलिए उसको दवाखाना फुल टाइम खोल के रखा है यहाँ पर, डे एंड नाइट, अभी कैंप खत्म नहीं होता है, कैंप के बाद भी चलते रहता है वो। जिन जिन को बाद में भी आना है वो भी आ सकते हैं इस लीला में सहभागी होने के लिए, है राधा रानी की लीला है एक्चुअली। राधा रानी अपने भक्तों को, आप जैसे भक्तों को प्रेम देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए ये संकल्प करते रहती हैं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।